चलिए साहब, कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम, विल बी राइट बैक, डोंट यू गो.
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो. ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com. QTL, बिकॉज वी केयर.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने. उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे.
S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है. अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो, 416-655-2000. अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है.
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो, 3 साल लई नो ब्याज.
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747471.
From helmets to sunscreen, we do everything we can to keep our kids safe. So, how can the COVID-19 vaccine help protect them? COVID-19 vaccines can help keep children safe from severe illness and potential long-term effects of the virus. Millions of children in Canada and around the world have already been safely vaccinated. Help protect your child. Book their appointment at canada.ca/covid-vaccine. A message from the Government of Canada.
डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे, और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टलर के इंटरसेक्शन पे. बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं. अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साजो आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा. डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट,
9054578661. North American, Chinese ते Korean नवे ते इस्तेमाल शुदा tires with full warranty.
Akal Truck and Lube, 1776 Mearside Drive,
जी साहब, हंसना खेलना सब बंद. मुंह पे उंगली रखना अपनी.
हंसना मन है.
अब चलेंगे हम अपनी सीरियस टॉक की तरफ, एकदम सीरियस टॉक. नो हंसी मजाक.
यस.
और सीरियस टॉक के लिए मैं लेके आया हूँ यहाँ पर एक हंसती हुई लड़की. शाजिया मलिक जी मेरे साथ है. जी
हाँ जी. बस माजिद भाई, हम पहले तो शुरू कर लेते हैं अपनी जो हमारी जो लोकल हसीना है ना, मेलनी जोली.
हाँ जी, हाँ
जो कि बिल्कुल एंजेलिना जोली की तरह लगती हैं, उनकी सगी बहन लगती हैं वैसे. इतनी
ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल. तो जो एंजेलिना जोली जो हमारी है कनाडा की, मेलनी जोली, मेलनी जोली जो कि हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो आपको पता ही है कि UNGA का न्यूयॉर्क के अंदर वो चल रहा है, समिट चल रहा है 77. तो नॉट रियली एट दैट अभी, मगर जो उनके कॉन्क्लूडिंग जो कमेंट्स हैं अभी जो थोड़ी देर में वो बोलने वाली हैं, तो उसका जो एक एजेंडा आया है, ये ड्राफ्ट आया है एक, जो कि वो बोलेंगी फ्रेंच में. तो फ्रेंच में जो ड्राफ्ट आया है तो कि वो किसके ऊपर बोलने वाली हैं अभी थोड़ी देर में, वो ये है कि वो विमेन राइट्स के ऊपर बोलेंगी और इस तरह की बातें करेंगी कि जैसे तालिबान के अंदर کی حکومت کے انڈر جو ہے وہ لڑکیوں کے پاس نہیں ہے, رائٹس نہیں ہیں, روہنگیا جو ہیں وہ مسلمان عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ایکسکیوز می ظلم کر رہی ہے وہاں کی ملٹری میانمار کے اندر, اور جو ہے یہاں پہ جتنے بھی ڈفرنٹ اور کنٹریز ہیں وہاں پہ ویمن کو رائٹس نہیں دیے جا رہے ہیں. تو وہ کہیں گی یہاں پہ اکارڈنگ ٹو دا ڈرافٹ جو کہ میڈیا کے پاس آیا ہے کہ کینیڈا ان کو بتانا چاہتا ہے کہ عورتیں اور لڑکیاں جو بھی دنیا میں کوئی چوز کرتی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, کینیڈا ایٹ لیسٹ جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اچھا اب یہ پوچھا گیا, یہ کوسچن کیا کہ میلانی جولی جو ہے اس طرح کا کیوں ایک سپیچ دے رہی ہیں وہاں پہ, ایجنڈا لے کر سامنے آ رہی ہیں یو این جی اے کے اوپر. تو وہ یہ اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو امریکہ کی سپریم کورٹ ہے اس نے کہا تھا کہ ابارشنز نہیں کرا سکتے ہیں, اور اگر کچھ سٹیٹس نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی اور جورسڈکشن میں جا کے ابارشن کراتی ہے تو اس کو پنشمنٹ دی جائے گی. تو اس سیناریو میں جو یہ ساری سپیچ ہے عورتوں کے رائٹس کے لیے, یہ ہماری میلانی جولی جو ہیں
بٹ دیٹ فیورز جناب جو بائیڈن
جی
That favors جناب جو بائیڈن
جی 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 جی
ہے نا, ان کا جو موقف ہے نا
وہ ڈفرنٹ ہے, وہ ڈفرنٹ ہے
نا, مگر ان کا موقف بھی ہے جو یہ بات کرنا چاہ رہی ہیں کہ رائٹس ہونے چاہیے.
ہاں یعنی کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے امریکہ میں اس کے اگینسٹ ہے, ان کا ہاں اس کے اگینسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں عورتوں کے پاس رائٹس ہونے چاہیے, مگر ان کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نہیں ابارشن رائٹ نہیں ہونا چاہیے, آپ کسی کی جان بچے کی نہیں لے سکتے. جبکہ وہاں پہ ڈاکٹرز نے کہا کہ مطلب اتنے جب ویکس ہوتے ہیں تو ابھی اس میں بچے میں جان نہیں آئی ہوتی ہے, تو اگر بچی کے ساتھ کوئی ریپ ہو جاتا ہے یا کوئی اور کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا کرا سکتی ہے ابارشن, تو اس کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ونس یو آر پریگنٹ اینڈ یو شوڈ کیپ دا چائلڈ. یو نو
ٹو ڈفرنٹ موقفز ہیں, ایک ریپبلکنز کا ہے
جی
جو سپریم کورٹ نے کہا ہے,
جو سپریم کورٹ نے کہا ہے
نا,
اور ایک ڈیموکریٹس کا,
ڈیموکریٹس کا ہے جو یہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ بل بھی لے کے آ رہے ہیں اس پہ, مگر یہ کہ یہ ڈیموکریٹس کو فیور کر رہے ہیں.
جی جی بالکل, تو یہ ان کے اس پہ بولیں گی, تو یہ جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں ان کی سپیچ شروع ہونے والی ہے تو یہ وہ بات کریں گی. اچھا جی آپ کو پتا ہی ہے کہ ہم نے آپ کو ویکینڈ سے بتانا شروع کیا تھا کہ اٹلانٹک کینیڈا کی طرف ہماری آنٹی فیونا آ سکتی ہیں, تو اس فیونا نے جو ہے وہ کافی تباہی مچائی ہوئی ہے اٹلانٹک کینیڈا میں. تو وہاں پہ ابھی جو ٹروڈو صاحب ہیں وہ بات کر رہے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے جو ہے وہاں پہ لگایا ہے ملٹری کو ہم نے لگایا ہے, اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں, ٹروڈو صاحب نے کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں, میں نے بات بھی کی ہے پریمیئرز اور میئرز اور ایم پیز کے ساتھ کہ کینیڈینز جو ہیں دے آر سٹیپنگ اپ, اور وہ اپنی کمیونٹیز جو ہیں ان کو اس مشکل وقت میں ہیلپ کر رہے ہیں, اور جو کچھ بھی یہ جو تباہی آئی ہے جیسے کہ یہ بتایا گیا تھا کہ بہت زیادہ درخت گرے تھے اور بے تحاشا لوگوں کے پاس جو ہے پاور آؤٹ ریج ہے ابھی بھی وہاں پہ چل رہا ہے, تقریباً کوئی کہتے ہیں 500,000 لوگوں کے پاس پاور آؤٹ ریج جو تھی اس میں سے صرف 200,000 کو ریسٹور کی گئی ہے, 300,000 جو ہے ابھی بھی نہیں ہے. تو اور دو لوگ جو ہیں وہاں پہ ان کی ڈیتھ کی بھی کوئی خبر آئی ہے. تو ٹروڈو صاحب نے وہی کہا کہ جن لوگوں نے اپنے گھر گما دیے ہیں, اپنے لوگوں کو کھو دیا ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ہر طرح کی جو ہے ہیلپ ان کو دینے کو جو ہے وہ تیار ہیں. تو آپ یہ تو نہیں میں چاہتا کہ میں کسی بھی صوبے کے جو کام ہے اس کے اندر میں انٹرفیئر کروں, لیکن پھر بھی اگر کوئی ایمرجنسی ریسپانس جو ہے گراؤنڈ پہ ہے اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں. اچھا اب یہ جب یہ بات کر رہے تھے تو این ڈی پی کے جو ایمرجنسی پریپیرڈنیس کرٹک جو ہیں رچرڈ کیننگ, انہوں نے کہا ہے کہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہاں پہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے ہاؤس آف کامن سپیکر اینتھنی روٹا کو, انہوں نے کہا جی کہ ایم پیز کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری کیا پریپیرڈنیس ہے اور ہم کیا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہماری ایک اگر ڈیبیٹ کی جائے اور ہمیں پتا چلے کہ کیا کام ہو رہا ہے ایکچولی آن گراؤنڈ, تو یہ ذرا زیادہ اچھا رہے گا. تو اب دیکھیں گے ہو سکتا ہے کل جو ہے ہاؤس آف کامنس میں اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ایک ہو سکتی ہے. بہرحال گورنمنٹ جو ہے اپنا کام کر رہی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انیتا آنند صاحبہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری جو ہے ملٹری از آلریڈی ان اٹلانٹک کینیڈا, ملٹری کو بلایا گیا تھا کہ بھئی آپ آ کے جو ہے وہ ہیلپ کریں. تو اس میں جو ہیں ہمارے جو کینیڈا کے ایمرجنسی پریپیرڈنیس منسٹر بل بلیئر نے بھی کہا تھا کہ ملٹری جو ہے وہ فوڈ شیلٹر اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو پرووائڈ کر رہی ہے, ریسکیو کا کام وہاں پہ کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی فائنینشیل پرسپیکٹو ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ریڈ کراس کینیڈا نے کہا ہے جی کہ گورنمنٹ جو ہے پروونسز کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اب تو ملٹری بھی ان پلیس ہے, اپنے سارے جو اکوپمنٹ ہے اس کے ساتھ وہاں پہ ہیں, ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاور کو, یوٹیلیٹیز کو, روڈ ویز کلیئر کر رہے ہیں تاکہ جو लोगों को जो चीजें चाहिए वो आराम से पहुंचे।
बहुत सारी रोड्स वॉश आउट हो चुकी
है, वॉश आउट हो चुकी है, हाँ जी, उनको रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनकी जो है पहली प्रायोरिटी है। तो ये जो था असल में जो स्टॉर्म था ये आया था, इसमें जो न्यू फाउंड लैंड है, फिर नोवा स्कोशिया और फिर पीआई की तरफ, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की तरफ जो था ये गया था और इसने काफी वहां पर जो है तबाही मचाई है। लेकिन बहरहाल अब जो है वो मिलिट्री काफी सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है। तो उसी का जिक्र जो थे आज अनीता आनंद भी और बिल ब्लेयर साहब जो है वो कर रहे थे, सारी डिटेल्स जो है वो दे रहे थे। इसके अलावा जी जो हमारे ऑन्टेरियो के प्रीमियर हैं प्रीमियर फोर्ड साहब जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि हाइड्रो वन जो है, हाइड्रो वन ऑल्सो इज स्टैंडिंग बाय अटलांटिक कैनेडा में, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई और प्रॉब्लम्स हैं फियोना की वजह से, तो हम हर वक्त तैयार रहेंगे। और जो ओटावा के मेयर थे जिम वॉटसन, उन्होंने भी इस चीज को रिकग्नाइज किया था। उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी हाइड्रो वन के जो लोग हैं वहां पे अटलांटिक कैनेडा में पहुंच गए हैं और वहां पे उनकी हेल्प कर रहे हैं। और वो कहते हैं जी ये बड़ा ही जो है वो डकफोर्ड साहब ने भी कहा कि ये इलाका जो अटलांटिक कैनेडा का, मैं वहां पे गया हूं, लोग बड़े अच्छे हैं, कम्युनिटी का एक दूसरे का बड़ा साथ देते हैं, तो हम हर तरह के बहुत प्यारे लोग हैं, तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं, वो हैं। अच्छा, जो जिम वॉटसन साहब हैं ओटावा के मेयर, उन्होंने कहा है कि मुझे पता चला है कि 10 से 15 लोग जो हैं वो ओटावा जो हाइड्रो है उससे भी वहां पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो उसी सिलसिले में जो थी ये बात कर रहे थे जो है डकफोर्ड साहब, कि अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो हम और भी लोगों को वहां पे भेजेंगे, खासतौर पे जो नोवा स्कोशिया का इलाका है वहां पे हालात जो है वो काफी खराब हैं। और इसके अलावा जो है बहुत सारा क्रू जो है वो स्टैंड बाय के ऊपर भी है, तो अगर कभी बिल्कुल कोई जरूरत पड़ेगी तो हम और लोगों को भी भेज सकते हैं। इसके साथ साथ जो ऑन्टेरियो की गवर्नमेंट है, आज जो ऑन्टेरियो के लेबर मिनिस्टर हैं मॉन्टी मैकनॉटन साहब, उन्होंने आज अनाउंस की है कि हम न्यू फंडिंग्स जो है, एक न्यू सेट ऑफ फंडिंग्स जो है वो दे रहे हैं अपने प्रोविंस के अंदर, अंडर प्रोविंशियल स्किल्स एंड डेवलपमेंट फंड, ताकि जो लेबर की शॉर्टेज है उसको खत्म किया जा सके। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हैमिल्टन के अंदर कर रहे थे आज, और उन्होंने कहा है कि $90 मिलियन जो है हम दे रहे हैं अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको काम तलाश करने के सिलसिले में जो यहां पे प्रोविंस में, और हमने ऐड किए हैं इससे पहले 15.8 मिलियन ऑलरेडी इस काम के लिए जो है वो रखे गए थे, ये जो है प्रोविंशियल स्किल्स एंड डेवलपमेंट फंड उसके लिए। वो कहते हैं जी कि हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि जो यूथ एट रिस्क है, जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, इंडिजिनस लोग हैं, और खासतौर पर वो लोग जो कि क्रिमिनल जस्टिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस यानी कि जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं, उसमें क्या होता है कि उनके पहला इंटरव्यू तो हो जाता है, दूसरे इंटरव्यू में मॉन्टी मैकनॉटन साहब ने कहा कि उनके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस जो हैं बिल्कुल ही 50% तक कट जाते हैं, क्योंकि जो बंदा क्रिमिनली चार्ज होता है उसको कोई जॉब देने को तैयार नहीं होता। और यही खास सेक्टर है जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं और हमने फंड्स बढ़ाए हैं ताकि इनको जो है ये शॉर्टेज जो इतनी आ गई है मार्केट के अंदर इसको कम किया जा सके, इनको जो है वर्कफोर्स में लाया जा सके। तो ये आज काफी जो है इनकी अनाउंसमेंट्स मेजर इन्होंने की हैं। इसके अलावा जनाब, हमने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि आज से सितंबर 26 से जितने भी एडल्ट्स 18 एंड अबव हैं उनको जो है बूस्टर, बायवेलेंट बूस्टर जो है वो लगाया जाएगा, और आज से वो शुरू हो गया है।
लगवा लिया अपना?
जी मैंने तो लगवा लिया बहुत दिन पहले ही।
नहीं नहीं, ये वाला बूस्टर नहीं लगवाया, ओमिक्रॉन का,
यानी कि आप पांचवा फिर लगवाना पड़ेगा माजिद भाई।
ओमिक्रॉन वाला आपने ओमिक्रॉन वाला नहीं?
हाँ, बायवेलेंट मुझे लगवाना ही नहीं है, बस मेरे ऑलरेडी चार हो गए हैं, मुझे
चार हो गए। उनका कहना ये है कि आप ये लगवाओ या तीन लगाएं, कितनी भी लगाए हों आप
या 50 लगाए हों,
आप ये लगाना पड़ेगा, वाला लगा लें।
अच्छा ठीक है, नहीं हम खुद बहुत बड़े ओमिक्रॉन, हमसे डरता है वो, हमें नहीं कुछ कहता। ठीक है जी। अच्छा जी, तो 18 एंड अबव को ये शुरू हो गया, तो वो कह रही है गवर्नमेंट ऑन्टेरियो की, ऑन्टेरियो कोविड 19 वैक्सीनेशन पोर्टल या के प्रोविंशियल वैक्सीनेशन कॉन्टैक्ट सेंटर जो है उसमें या तो वेब ऑनलाइन जाके या इस पे सेंटर पे कॉल करके 1-833-943-3900 इस पे करके आप जो है अपने वैक्सीनेशन जो है वो लगवा सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा लें जितने भी पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनके थ्रू, और इंडिजिनस वाले जो है इंडिजिनस लेड जो वैक्सीनेशन के क्लिनिक्स हैं उनके थ्रू, और जितनी भी पार्टिसिपेटिंग हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं या के फार्मेसीज हैं उनके थ्रू अब आप ये कर सकते हैं। लेकिन बीच में वक्फा जो है एटलीस्ट 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम जो है 6 मंथ्स का होना चाहिए, तो उसमें आप फिर जो है ये बायवेलेंट जो वैक्सीन बूस्टर है ये आप लगवा सकते हैं।
और इसके साथ साथ जो बच्चों का है 0-5 ईयर्स,
जी जी वो भी,
6 मंथ्स टू 5 ईयर्स जो है वो भी आज शुरू हो गया है, तो उसमें भी जो अपॉइंटमेंट लगवाना चाहते हैं तो वो उनके भी
जी
आज से
शुरू हो गए। हाँ जी, एसोसिएटेड प्रेस की न्यूज है जी, और आपको हमने फ्राइडे को बताया था कि जो नई गवर्नमेंट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई है लिज ट्रुथ की, वो अब जो है टैक्स कट्स की बात कर रही है, लेकिन एसोसिएटेड प्रेस की आज जो न्यूज है वो कहती है कि ये जो इनका एक था आइडिया कि शायद हम टैक्स कट्स करेंगे तो हमारी जो है इकोनॉमी के अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, ये स्ट्रेंथ नहीं आई। जिस वक्त से ट्रेजरी चीफ जो है इनके क्वासी क्वार्टेंग जिन्होंने ये टैक्सेस जो है कट्स का अनाउंस किया था, उस वक्त से जो पाउंड अगेंस्ट यूएस डॉलर है वो बहुत ज्यादा गिर गया है, और उन्होंने कहा जी कि अब तो कंसर्न ये आ गया है इनका कि यूके भी रिसेशन की तरफ जा रहा है। अच्छा, मेरा ये कहना है कि यूके ऑलरेडी रिसेशन में है, ऑलरेडी जा क्या रहा है, रिसेशन में है ऑलरेडी। वो कहते हैं कि इट फेल एज लो एज 1.0373 अगेंस्ट द डॉलर, जो कि 1971 के बाद से पहली बार इतना नीचे आया है पाउंड जो है वो डॉलर से कंपेयर्ड। और जो यहां पे एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं जी कि चाहते तो ये थे कि ये इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको हाई किया जाए, लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन इतनी हाई है तो इनका ये जो आइडियोलॉजी थी कि हम टैक्स कट्स करके,
ये तो हमने मैंने
पहले कह दिया था कि इट विल नॉट हेल्प, इट विल नॉट हेल्प,
क्योंकि उनकी साइंस हमें समझ में नहीं आ रही,
नहीं आ रही।
वो करने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा,
नहीं पड़ेगा। $350 छोड़ रहे हैं हर हाउस होल्ड को
साल में,
साल में
ना, तो वो भी टैक्स पे, तो अगर वो इतना करेंगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनको किसी तरह जैसे सर्ब वगैरह का चक्कर था यहाँ पर, वैसा करें, वैसा दें कुछ, या ये कि अब जो ये इनका पाउंड इतना गिर रहा है ना, उसका नुकसान ये है कि जो यूके की जो एक्सपोर्ट है, क्योंकि एवरीथिंग इज इन डॉलर्स, उनकी जो एक्सपोर्ट है वो बहुत
एडवर्सली इफेक्ट होगी,
इफेक्ट हो जाएगी ना, कि वो जो एक जो चीज जो अमेरिकन डॉलर में एक डॉलर की खरीदती थी, अब वो आपको 70 सेंट्स
मिलेगा। जी जी, बिल्कुल।
ये जो है, ये
काफी नुकसान है,
बहुत नुकसान,
काफी नुकसान है। अच्छा जी, एक और न्यूज है, एसोसिएटेड प्रेस ही की है, एंड दिस इज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका ये कहना है कि जो हमारे ग्रोथ के, दुनिया में जो वर्ल्ड ग्रोथ के जो पैरामीटर्स हमने जो सेट किए थे कि 2022 में कहां कहां पे ग्रोथ आएगी, वो अब हम बहुत ज्यादा नीचे कर रहे हैं अमिड वॉर इन यूक्रेन। उसकी वजह से इकोनॉमिक, जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत कम आ गया। वो कहते हैं जी वर्ल्ड वाइड ग्रोथ जो है इस साल 3% पे रहेगी, और नेक्स्ट ईयर तो इससे भी नीचे आ जाएगी, 2.2% पे चली जाएगी, जिसका के मतलब है कि ग्लोबली 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इन आउटपुट जो है वो 2023 में लूज किए जाएंगे। वो लोग जो हमारा देख रहे हैं टीवी, वो देख सकते हैं कि कैसे ये उन्होंने ब्रेक डाउन किया हुआ है कि कैसे किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा इफेक्ट होएगा और क्या होएगा। ग्रोथ जो अमेरिका में दिखाई जा रही है वो भी बहुत कम, 1.5% के करीब इस साल में दिखाई जा रही है, और वो कह रहे हैं कि अगले साल तो ये 0.5% सिर्फ होएगी। इसी तरह जो इनकी इकोनॉमी जो है, 19 जो कंट्रीज हैं डिफरेंट जिनको के इन्होंने सब कैटेगराइज किया है, उसमें सिर्फ 1.25% से ऊपर जाएगी, और 2023 में तो ये जो है और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये काफी जो है, खासतौर पे जो
आप जो हमारा टीवी देख रहे हैं शादी जी, आप अगर जी, देखें तो इमर्जिंग एंड डेवलपिंग एशिया जो है,
हाँ,
उस पर सबसे ज्यादा ऊपर है,
ऊपर है, इसलिए कि उसके अंदर हांगकांग भी थोड़ी ग्रोथ दिखा रहा है, चाइना दिखा रहा है, इंडिया दिखा रहा है, तो उसकी वजह से जो है बांग्लादेश में अभी थोड़ी सी स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई है, उसकी वजह से जो है वो सेक्टर जो है, वो इलाका जो है, यानी कि उसमें तो अच्छी है चीजें,
फिर भी
मतलब ऐसा है जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, उसके बीच सा है, बाकी तो सारे मारी रहे, तो इसलिए जो है वो, हालांकि चाइना में भी काफी नीचे आ गई है ग्रोथ की,
यूनाइटेड स्टेट्स और यूरो का एरिया जो है,
हाँ, बहुत बहुत रिसेशन
23 में 1% एंड 1.2%,
या एग्जैक्टली। और वो कहते हैं और आगे चलते चलते मे भी, वो कह रहे हैं कि अगर क्वार्टर जो 2023 का थर्ड या फोर्थ क्वार्टर होगा तो हो सकता है 0.5% पे ग्रोथ आ जाए, तो इसलिए जो है वो और भी नीचे, या 0.3% तक भी आ सकती है कुछ एरियाज में, ईयू के एरियाज में, तो ये उन्होंने कहा है। अच्छा जी, ये जो अब हरिकेन्स और स्टॉर्म्स और ये जो हैं, ये सिर्फ अब ये पहले तो अमेरिका में आया, फिर अब ये अटलांटिक कनाडा में आ गया है, बट इट्स नॉट रियली स्पेसिफिक टू अस, जैसे कि हमने पाकिस्तान के लिए शुरू किया था कि इतने बैड फ्लड्स आए हैं। ये जी अब एक और एक है हरिकेन ईन जो है, वो अब क्यूबा के अंदर आ रहा है जी, वो क्यूबा के अंदर आया है, और ये क्यूबा में इसने काफी तबाही मचाई है और क्यूबा के अंदर इसको कैटेगरी 4 हरिकेन कहा गया था। सारे छते इसने उड़ाई, घर गिराए, अगेन जो थी वो रोड्स जो थी उड़ गई और दरख्त गिरे रहे, और अब ये एंटर हो रहा है फ्लोरिडा के अंदर और इसकी टैम्पा बे में अब ये जो एंटर हो रहा है और इसकी जो हवाओं की स्पीड है 140 miles पर आवर के पास है ये, और ये वहां पे भी केयर कहा जा रहा है। तो अब वहां पे भी फ्लोरिडा में भी अनाउंस किया गया है कि जो लोग पानी वानी के जरा पास हैं वो जरा वहां से निकल जाएं और अलर्ट्स अपने ऑन रखें और देखते रहें कि क्या उनको अलर्ट्स आ रहे हैं और उस तरह से वो अरेंजमेंट्स बनाएं अपने, तो वहां से निकलें। अच्छा जी, अब इसके बाद फिलीपींस जो है जी, फिलीपींस के अंदर भी इस वक्त टाइफून नोरू आया हुआ है और अगर आप देख रहे थे संडे के वक्त तो संडे को काफी यहां पे नुकसान हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं मनीला खासतौर पे जो उनका कैपिटल है उधर से इनको जो है लोगों को इवैक्यूएट किया गया है और यहां पे भी ये जो आया था टाइफून नोरू ये 195 kilometers per hour की इसकी जो थी हवाएं चल रही थी। बर्डुअस टाउन जो है पोलिडो आइलैंड के अंदर कुजोन प्रोविंस में वो बेतहाशा जो है बुरे तरीके से हिट है और यहां पे भी लोगों को जो है वो इनका एनवायरमेंट जो एजेंसी है उसने कहा है कि ये बहुत ज्यादा जो डेंजरस जोन जो आप टीवी पे देख रहे हैं या रेडियो पे सुन रहे हैं उनसे आप लोग बाहर निकल जाएं, जो खास तौर पे जो कोस्टल एरियाज हैं। और इसमें अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि जो रेस्क्यू टीम लगी हुई थी वो रेस्क्यू टीम के 5 लोगों की डेथ हो गई है इसके अंदर। वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और तकरीबन 17,000 लोग जो हैं उनको अब इमरजेंसी शेल्टर्स के अंदर शिफ्ट किया गया है। तो बेतहाशा मैसिव नुकसान है वहां पे, हजारों लोगों के पास अभी भी जो है वो दरख्त गिरे हुए हैं, वो सड़कें साफ नहीं है, घर
ये ग्लोबल ग्लोबल
तो ये ग्लोबली आ रहा है, ये ग्लोबली आ रहा है और जो है पावर नहीं है तो काफी जो है वहां पे भी प्रॉब्लम है। रशिया के अंदर जी इस वैक्स का जो एरिया है वहां पे जनाब बड़ी अजीब बात हुई, एक आदमी ने जो है वो गन निकाली और वहां पे शूटिंग शुरू कर दी। ये था स्कूल नंबर 88 यहां पे और उसने 15 लोगों को बच्चों को मारा और 24 बच्चों और स्टाफ को जो है बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया। रशिया की जो इन्वेस्टिगेटिव कमेटी है उसने गनमैन जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। इसका नाम है अर्तियोम कजकस्तेव और इसकी 34 एज है और वो कहते हैं वो इसी स्कूल का पड़ा हुआ है और उसको जब मारा गया, जब उसने अपने आप को खुद शूट कर लिया फिर उसके बाद इन सबको मारने के बाद, तो वो जब मरा हुआ मिला वो तो उसने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर वो स्वास्तिका का जो नाट्री साइन होता है उसकी टी शर्ट के ऊपर वो था। मोटिव क्या था इस लड़के का वो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जो गवर्नर हैं उद्मिरता के अलेक्जेंडर ब्रशलॉफ उन्होंने कहा है जी कि ये आदमी जो था इसको साइकियाट्रिक फैसिलिटी में ये था और वहां से ये भागा था और उसने ये हरकत की है। तो जाहिर है कि उन्होंने बड़ा डिनाउंस किया और जो व्लादिमीर पुतिन है प्रेसिडेंट रशिया के उन्होंने भी इसको डिनाउंस करते हुए बड़ा ही इनह्यूमन अटैक जो है वो कहा है। इसके अलावा जी अभी आपको पता ही है कि ये तूफान चल रहे हैं और पेंडेमिक भी कुछ हद तक चल रहा है, तो अब जी युगांडा से ये न्यूज आई है कि वहां पे इबोला का फिर से आउटब्रेक फिर से जी शुरू हो गया है। यहां पे जी 16 लोग जो है उनको डिटेक्ट किया गया है, उनको इबोला था। 18 जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि लाइकली, क्योंकि उनके सिम्टम्स ऐसे हैं कि वो भी शायद उनको भी इबोला हो सकता है। 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और वो जो बॉडीज थी जाहिर है कि वो उनके रिश्तेदारों को नहीं दी, वो वही उन्होंने कहा जी दूर से खड़े होकर आपने दुआएं मांगनी है तो मांग लें। जो स्पेशल इनका युगांडा का स्टाफ था पूरे जो पीपीईज जिन्होंने पहने हुए थे उन्होंने इनको दफनाया है और वो कह रहे हैं जी कि ये एक इवॉल्व किस्म का स्ट्रेन है जो कि सामने आया है, जो हमें पहले लग रहा था कि ये सूडान से आया तो ये इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अब ये हमें पता चल रहा है कि खतरनाक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम है वो कह रही है कि जी हम कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये आउटब्रेक जो है ये कितना ज्यादा फैल चुका है और ये जो है बिगनिंग ऑफ सितंबर में इन्होंने करना शुरू किया था डिटेक्ट और अभी तक जो है 4 डेथ्स उसमें हो चुकी हैं, तो ये अब जनाब शुरू हो गई है। वाशिंगटन पोस्ट की जनाब बड़ी आज एक इंटरेस्टिंग न्यूज है और ये आज की इनकी जो न्यूज है वो इटली के बारे में है और जैसे कि बाकी सारी दुनिया में भी बड़ा अब एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट अब हाई है तो उसी के ऊपर है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो मारियो ड्रैगी जो थे जिनकी कि यूनिटी गवर्नमेंट थी अभी कुछ दिन पहले इटली में वो कलैप्स कर गई थी, तो अब जो वहां पे हवाएं चल रही हैं उसके अंदर जो नई है खातून जॉर्जिया मेलोनी, इनकी जो फार राइट फ्रेटेलिटी डे इटालिया जो पार्टी है, सोचा जा रहा है कि ये ही जीतेगी और ये ही प्राइम मिनिस्टर बनेगी, और अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो इनकी जो प्रायोरिटीज हैं उनमें से एक जो है इमिग्रेशन के अगेंस्ट है। वो कहती हैं जी कि रूल्स ऑफ बिजनेस बड़े सिंपल हैं, ये जो है मेलोनी साहिबा कहती हैं, वो कहती हैं इफ यू कम टू माय हाउस यू विल प्ले बाय माय रूल्स, बस एज सिंपल एज दैट। वो कहती हैं जी और हम ये जितने भी इमिग्रेशन के डोर्स हैं अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए वो सब हम बंद कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे इटालियन पोर्ट्स के ऊपर लोग आके लैंड करें और हमको फिर लीगल चैलेंजेस जो हैं वो पोज करें, हमको और प्रॉब्लम्स करें, हमारी गवर्नमेंट को बैड नेम दें, क्योंकि अगर उनको सही तरह से नहीं किया जाएगा डील तो फिर वो हमें बैड नेम देंगे, फिर हमें हम जो है इनको ना तो कभी रेस्क्यू कर सकते हैं, कभी ये इटली पहुंचते पहुंचते इनकी डेथ्स हो जाती हैं, तो हम नहीं चाहते कि अनडॉक्यूमेंटेड कोई बंदा आए, जो भी कोई आए प्रॉपर प्रोसीजर से आए। अच्छा, अब जो है जो एक्सपर्ट्स हैं यूरोप के अंदर अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट, वो अब इस बात पे बड़ा भड़क गए हैं इनके जो बयान सुन के। वो कहते हैं जी कि बाजी अगर आपने ऐसे किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मैं यहां से गुजरने भी नहीं दूंगी वेसल्स को अपने इलाके से अगर मुझे पता चला कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर जो है कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि अगर ह्यूमैनिटेरियन एड वाले वेसल्स आ रहे हैं तो आप उनके बीच में और बाकियों के बीच में कैसे करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कभी कोई छुप के ह्यूमैनिटेरियन जो एड के वेसल्स हैं उनमें भी कोई बैठ के लोग आ जाएं और उतर जाएं इटली के अंदर, राइट, तो आप क्या करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स बड़ा क्रिएट करेगा। और फिर वो कहते हैं जी कि ये यूरोप के अंदर आपके लिए भी कॉन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि यूरोपियंस जो हैं वो तो कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि हमारी एजिंग पॉपुलेशन है, हमको लोग चाहिए, वो लोगों को जो इलीगली भी आ रहे हैं उसके लिए, जैसे यूएस के अंदर उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं, उनके वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, कुछ को प्रोसेस करते हैं, कुछ को कुछ टाइम देते हैं, तो आप अगर ऐसे करेंगी तो आपकी डायरेक्ट फिर लड़ाई जो है वो भी यूरोपियन यूनियन के साथ शुरू हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे या रेफ्यूजी स्टेटस जो लेना चाहते हैं उस स्टेटस उसके ऊपर तो यूरोपियंस वो एब्जॉर्ब करते हैं लोगों को। तो अगर आप कह रही हैं कि मुझे कोई भी इमिग्रेंट नहीं है ऐसा चाहिए, तो फिर ये आपकी जो है लड़ाई उसमें हो सकती है, लेकिन अब देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि जो पहली गवर्नमेंट थी इनकी मारियो ड्रैगी साहब की, वो तो बेचारे वो हाई यूटिलिटी बिल्स और पेंडेमिक और इन्फ्लेशन उनके साथ ही कर रहे थे, उसी में वो कलैप्स कर गए, तो अब ये जो आ रही है तो वो कह रहे हैं यूरोप वाले कि भाई इनकी तो और ही कोई फिलॉसफी है, तो भरल हर पार्टी की अपनी वो होती है।
जब से ट्रंप साहब जीते ना तो जो राइट विंग वाले लोग हैं पूरी दुनिया के जो राइट विंग वाले लोग हैं स्पेशली जो यूरोप वगैरह में इधर उधर जो है, तो उन्होंने देखा कि ही बिकेम सक्सेसफुल सेइंग ऑल दीज थिंग्स एंड ही बिकेम द
प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, कंट्री लाइक यूएसए जो कि इतना प्रो इमिग्रेशन,
फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स,
बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद ये चीजें ज्यादा जोर पकड़ गई हैं, बिल्कुल। अच्छा जनाब, आज की जो सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर थी वो ये थी कि पुतिन साहब जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि जो एडवर्ड स्नोडन है उसको वो रशिया की सिटीजनशिप दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी। अच्छा, अब इसमें अनएक्सपेक्टेड क्या था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि जिस वक्त इनको ये जो फॉर्मर यूएस इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर थे एडवर्ड स्नोडन साहब, 39 इयर्स इनकी एज है, और 9 साल पहले इन्होंने जिस वक्त ये सारा नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो अमरीका की है उसको एक्सपोज किया था कि ये सर्वेलेंस लगाते हैं और लोगों के राज लेते हैं, इलीगली प्राइवेसी के ऊपर ब्रीच करते हैं, उस दिन से इनके जो है लोग पीछे पड़े हुए थे और ये भाग के आगे थे 2013 में रशिया में, और रशिया में इनको जो है असाइलम दिया गया था, और ये उस वक्त से इनके पास थे और फिर दूसरे मुल्कों में भी ये फिरते रहते थे करते थे। आज जो है रशिया ने एक 72 फॉरेन बॉर्न इंडिविजुअल्स की एक लिस्ट जो है वो जारी की है, और उसके अंदर इन्होंने कहा है कि हम इनको भी सिटीजनशिप दे रहे हैं रशिया की। इनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, और लेकिन इनके जो लिस्ट रशिया की आई है उसमें है। आपको पता ही है कि पुतिन साहब खुद भी क्रेमलिन के स्पाई चीफ थे, उनके साथ काम करते थे, और उस वक्त जिस वक्त ये जीते थे तो इन्होंने कहा था कि एडवर्ड स्नोडन जो है जिसको कि यूएसए कॉन्स्टेंटली कहता है कि भाई हमें वापस दो, हम इसको ट्राई करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा था पुतिन साहब ने उस वक्त कि हां इन्होंने काम तो गलत किया है, लेकिन इसको आप ट्रेटर नहीं कह सकते जैसे कि यूएस वाला जो है वो ट्रेटर कह रहा है, इसने सिर्फ बातें रिवील की हैं वो कि लोगों के आप प्राइवेसी के ऊपर ऐसे ना एनक्रोच करें, तो उसमें कोई गद्दार नहीं हो जाता है। यूएसए कहता है कि इसके पास और भी बहुत सारी सेंसिटिव, क्योंकि ये तो उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी में काम ही करता था, तो ये इसके पास है, तो इसलिए अगर ये इसने राज दिए तो इसको ट्रेटर माना जाएगा। तो अब ये जो है ये बड़ी बहुत बड़ी खबर है, अब इसको अगर रशिया का सिटीजनशिप मिल गया तो ये तो फिर अब लीगली रह सकता है रशिया के अंदर। तो अब तो फिर इसको वो ऐसे बेचारे को जैसे वो जूलियन असांज बेचारे को एक कमरे में बंद होके
गलती हो गई थी कि अगर वो भी उस वक्त रशिया चला जाता
यस यस यस
फिर यस उसकी भी जान बच जाती
हाँ जी। अच्छा जी, अल जजीरा की आज एक न्यूज है और आपको पता ही है कि ज्यूज जो है वो अपना न्यू ईयर मना रहे हैं, जिसकी के आपको पता ही होगा कि जो जो रोश हैसना जो है उसकी बड़ी मुबारकें भी देते हैं और हमारे कैनेडियन लीडर्स ने भी दी है। उस सिलसिले में इन्होंने क्या किया है जी कि जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट ज्यूज हैं अल अक्सा मॉस के कंपाउंड में ये घुस गए थे वीकेंड के ऊपर और इजरायली जो अथॉरिटीज थी इनको प्रोटेक्शन दे रही थी। यहां पे जब ये आए हैं इजरायली पुलिस की प्रोटेक्शन के अंडर कंपाउंड में तो इनके क्लैशेस हुए। पैलेस्टीनियन रेड क्रॉस जो है वो रेड क्रिसेंट जो है उसका कहना है कि इन क्लैशेस के अंदर इजरायलीज ने 3 लोगों को जो थे पैलेस्टीनियंस उनको इंजर किया। जर्नलिस्ट जो हैं उनका कहना है जो कि इस चीज को कवर कर रहे थे वहां पे जेरूसलम में, उन्होंने कहा जी 10 लोगों को जो है यहां पे अरेस्ट भी किया गया है और इसके अंदर पैलेस्टीनियन विमेन और बच्चे थे उनको डंडों से मारा भी गया और बूढ़े भी लोग थे पैलेस्टीनियन उनको भी मारा गया। और ये उस वक्त लड़ाई शुरू हुई जब 400 इजरायली जो हैं जिसको कि ये इन्होंने ऑक्यूपाई किया था 1967 में और इलीगली अपना हिस्सा बनाया था उसके कंपाउंड में घुस के, तो पैलेस्टीनियंस का कहना यह है कि आपके तो अपने खुद के जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो कहते हैं कि आप ज्यूइश प्रेयर्स जो हैं यहां पे अलक्सा के मॉस्क के कंपाउंड में नहीं कर सकते हैं, तो अब आप जो हैं क्यों इसमें घुसे हैं और आप क्यों इसके अंदर जो हैं वो दुआएं मांग रहे हैं। बहरहाल जी ये उधर गए हैं अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इजरायली पुलिस और अब ये जो है रोश हैशना ये जो शुरू रहेगा सितंबर 25 से 27 यानी कल तक रहेगा वहां पे ये लोग जो हैं अलक्सा मॉस के कंपाउंड में प्रेयर्स पढ़ेंगे जो कि पहले अलाउड नहीं था लेकिन अब ये जो हैं घुस के वहां पे पढ़ते हैं। रॉयटर्स की ये न्यूज है जी और रॉयटर्स की इस न्यूज के मुताबिक जो है ईरान ने आज यूएसए के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारे मुल्क में जो कुछ ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनके पीछे यूएसए है। और ये प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुए, शुरू इस तरह हुए हैं कि कर्डिश एक वोमन थी मासा अमीनी, उसको जो है उसने ड्रेस जो था वो कुछ आजाद सा पहना हुआ था, मोरालिटी पुलिस जो है इनकी ईरान की वो उसको लेके चली गई थी और उसके बाद पता चला ये 22 ईयर ओल्ड माशा अमीनी जो है उसकी डेथ हो गई है। लोगों का कहना था कि पुलिस कस्टडी में ये मरी है तो पुलिस ने इसको इतना मारा है शायद कि ये मर गई है। उसके बाद से ईरान के अंदर बेतहाशा जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। तो ये ईरान कह रहा है कि इन तमाम प्रोटेस्ट के पीछे वाशिंगटन है और हमें पता है कि इन राइटर्स को यूएस जो है वो सपोर्ट कर रहा है और जो है ये हमेशा ईरान की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को वीकन करने के लिए हमेशा इन्होंने कोशिश की है लेकिन ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। लेकिन यूएसए नहीं सिर्फ बल्कि ईयू ने और बहुत सी अदर कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंडेम किया है ईरान का जो इसके ऊपर जो लोगों के ऊपर जो ये सख्ती कर रहे हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं। जर्मनी जो है उसने इरेनियन एम्बेसडर को बर्लिन में बुलाया है, इसी तरह जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के जो में जो एम्बेसीज हैं इनकी ईरान की उन्होंने भी इनको बुलाया और इनको कहा है कि भाई ये हम बहुत ज्यादा कंडेम करते हैं जो तुम्हारे मुल्क में हो रहा है। इसके अलावा लास्ट वीक यूएस ने ईरान की जो मोरालिटी पुलिस थी उसके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज किए हैं। तो ईरान ने इस सिलसिले में यूके और नॉर्वेजिया के एम्बेसडर्स जो है उनको भी बुलाया है क्योंकि उनका जो मीडिया है बहुत ज्यादा इन जो प्रोटेस्ट हैं उनके बारे में लिख रहा है। तो ईरान ने कहा कि ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है जो तुम्हारा मीडिया कर रहा है जो इस तरह की कवरेज दे रहा है। और लोगों का ख्याल है कि इससे पहले भी जो 2019 के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए थे तो उसके अंदर तकरीबन 1500 ईरानी जो है क्रैकडाउन में मारा गया था और अभी ये जो लेटेस्ट शुरू हुए हैं सितंबर 17 से इसके अंदर अभी तक 41 लोगों की जो है डेथ हो चुकी है डेमोन्स्ट्रेशंस में। तो लोगों का दुनिया में ख्याल है कि अगर ये और चले तो कहीं ऐसा ना हो कि 2019 का रेपिटेशन फिर से आए और इतने लोगों की डेथ हो। तो बहरहाल जी अब ईरान कहता है कि तुम लोग हमारे मामलात में ना दखल करो और ये तुम लोग हवा दे रहे हो इस चीज को सारे, तो अब देखेंगे कि सच इसमें क्या है। द प्रिंट की आज एक स्टोरी है जी और प्रिंट की स्टोरी के मुताबिक जो बीजेपी है वो कहती है कि एक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन बिठाने की हमको जरूरत है, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो सेटअप करें ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे ये जो नबाना चलो अभियान जो का जो मोर्चा निकाला हुआ था इन्होंने। और वो कहते हैं जी वेस्ट बंगाल में ये था तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इसको क्रैक डाउन करने की कोशिश की है क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है अकॉर्डिंग टू बीजेपी ऑटोक्रेटिक है, डिक्टेटोरियल है और जीनोसाइड रेजीम है। کیونکہ یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل مشینری کو کام نہیں کرنے دیتے, لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتے. بی جے پی کے جو پریزیڈنٹ ہیں جے پی نڈا, وہ پارٹی کے جو انجرڈ جو لوگ تھے ان سے کولکتا میں ملے تھے کچھ دن پہلے, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو لوگوں نے بی جے پی کی جو ریلی ادھر کی تھی, نکالی تھی ویسٹ بنگال میں, بالکل ٹھیک تھی, کیونکہ جو ویسٹ بنگال کی جو ٹی ایم سی گورنمنٹ ہے ترنمول کانگریس کی, وہ انتہائی پریکٹس جو کرتی ہے, کرپٹ جو آپریشنز چلاتی ہے, تو اس کے خلاف یہ تھا. ٹی ایم سی کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے پرکاش مجومدار, انہوں نے کہا جی بی جے پی کا یہ ہمارے خلاف ایجنڈا ہے اور یہ ان کی صرف جو ہے بدنیتی ہے. یہ جو بہت زیادہ جو جینوسائٹ ہوا تھا وہ تو سی اے کے پروٹیسٹ میں ہوا تھا, اور وہ یو پی میں ہوا تھا جہاں پہ ان کے یوگی جی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ پولیس نے بہت بروٹلی لوگوں کو اٹیک کیا تھا جنہوں نے بھی وہ سٹیزن شپ ایکٹ جو آیا تھا وہ اس کے اوپر تو انہوں نے کیا تھا. ویسٹ بنگال کی پولیس تو بڑی تمیزدار ہے اور بڑے ریسٹرینٹ میں رہتی ہے, کیونکہ ہم نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ لوگوں کے اوپر جو ہیں ڈنڈے نہیں برسانے ہیں. تو اور انہوں نے تو تصویریں بھی دکھائی, انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ بی جے پی کے ورکرز کتنی ہلڑ بازی کر رہے ہیں اور پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں, اور جب ان کو روکا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی کہ تم لوگ جو ہے جینوسائڈ چلاتے ہو. تو یہ جھوٹ اور پروپاگینڈا ہے ترنمول کانگریس کا کے خلاف ویسٹ بنگال کی گورنمنٹ کی اگینسٹ بی جے پی کا. بہرحال جی بی جے پی کہتی ہے کہ نہیں سی بی آئی جو ہے پروب بٹھائیں اور پتا چلے کیا ہے. پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی یہ نیوز ہے, اور ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کانگریس کے بہت ہی ٹال جو ایک لیڈر تھے غلام نبی آزاد صاحب, انہوں نے ریزائن کر دیا تھا, اور انہوں نے آج اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک نئی پارٹی جو ہے وہ ادھر کر رہے ہیں. جموں کے اندر وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور اس کے اندر انہوں نے اپنا جھنڈا دکھاتے ہوئے کہا کہ میں ڈیموکریٹک آزاد پارٹی جو ہے وہ آج لانچ کر رہا ہوں. یہ جو تھے جموں اور کشمیر کے فارمر چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اور پانچ ڈیکیڈز جو ہیں اس کی ایسوسیشن تھی ان کی کانگریس کے ساتھ, لیکن انہوں نے کہا جی کہ میرے جو آئیڈیلز ہیں اب ان کے ساتھ نہیں ملتے کیونکہ کانگریس کوئی کام نہیں کر رہی. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی جو ڈیموکریٹک آزاد پارٹی ہے اس کے آئیڈیلز کیا ہوں گے, تو انہوں نے کہا جی ہمارے آئیڈیلز مہاتما گاندھی کے آئیڈیلز کو فالو کریں گے, اور میرا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے, ہمارا کام ہے جموں اور کشمیر میں نارملسی لانا. اور اس کے علاوہ 24 پرومیننٹ اور جو کانگریس کے لیڈرز تھے انکلوڈنگ ایکس ڈیپوٹی چیف منسٹر تارا چاند, انہوں نے بھی ان کی پارٹی کو اب جوائن کیا ہے. تو مجھے ان کا جھنڈا جو ہے وہ یوکرین کی طرح کا نہیں لگ رہا, یہ دیکھیں یوکرین کے کلرز والا جھنڈا ہے نا, بالکل ویسا ہے. بہرحال جی یہ ان کی پارٹی کا جھنڈا تھا جو آج انہوں نے لہرایا اور بتایا. پی ٹی آئی اگین پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی یہ نیوز ہے جی, اور اس کے مطابق آپ کو پتا ہی ہے کہ 77 سیشن چل رہا تھا یو این جی اے کا نیو یارک کے اندر, اس کے اندر کچھ دن پہلے بھی جو تھا انڈیا کا کافی اعتراض آیا تھا, جو ڈیفنس منسٹر تھے انڈیا کے راج ناتھ سنگھ صاحب وہ ملے تھے جو یو ایس ڈیفنس سیکرٹری ہیں لوئڈ آسٹن کے ساتھ, انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پاکستان کو جو یہ دیے ہیں F-16 کی فلیٹ کے سارا اکوپمنٹ دیا تو آپ نے کیوں دیا, انڈیا کا بڑا کنسرن ہے. آج بھی جناب جو ہیں جو ایس جے شنکر ہیں انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کے جو سے ہیں ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں جو جے شنکر صاحب, انہوں نے آج پھر سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے پوچھا ہے کہ یہ آپ نے 450 ملین یو ایس ڈالر کا سسٹیننس پیکج F-16 فلیٹ کے لیے کیوں دیا ہے, کیونکہ آپ نے آج تک پاکستان کی بے تحاشا ہیلپ کی ہے لیکن آپ دونوں کے ہی جو پرپسز تھے اس پیسے نے وہ سرو نہیں کیے ہیں, تو چونکہ آپ کے پرپس ہی سرو نہیں ہو رہے, آپ کے ریلیشن شپ ہی ٹھیک نہیں چل رہا, تو آپ اس کو پیسے کیوں دے رہے ہیں, اور آپ نے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ یہ اس لیے آپ نے ان کو پیسے دیے ہیں تاکہ یہ ٹیررزم کے خلاف لڑیں, لیکن آپ کو تو پتا ہی ہے کہ پاکستان کس کے خلاف یہ پیسہ یوز کرے گا اور کس کے خلاف F-16 طیارے جو ہے وہ یوز کرے گا. ایک اور سوال ان سے پوچھا گیا کہ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس نے تو پاکستان کا سارا سسپینڈ کر دیا تھا ملٹری ایڈ, تو اب یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے پھر سے شروع کیا ہے, کیونکہ ٹرمپ صاحب کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر طالبان کے جو ہیں سیف ہیونز ہیں اور حقانی نیٹ ورک وہاں پہ وہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی اب یہی میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ کسی کو بھی فول نہیں کر سکتے ہیں, اور اس طرح کی جب یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن باتیں کرتا ہے تو ہم بیوقوف نہیں ہیں کہ ان کی بات مانیں, تو ان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے, ان کو اسلام آباد کو اتنے پیسے نہیں دینے چاہیے, اتنے پیسے نہ دو بھائی پاکستان کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں. آئی ایس پی آر کی آج ایک پریس ریلیز آئی ہے, اور اس کے مطابق جی انفارچونیٹلی انا للہ وانا الیہ راجعون 6 جو ہمارے فوجی جوان ہیں وہ جس میں کیسے 2 میجر بھی تھے, وہ ایک ہیلی کاپٹر پھر سے کریش ہوا ہے بلوچستان میں اور وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ جو تھا اپنے فلائنگ مشن پہ تھے خوست ہرنائے کے پاس, تو وہاں پہ ان کا جو ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بیڈ ویدر کی وجہ سے یہ وہاں پہ کریش ہوا ہے. یہ جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے جو مارٹرز ہیں وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے, پائلٹ میجر محمد منیم افضل پائلٹ میجر خرم شہزاد، نائک جلیل، صوبے دار عبدل وحید، سپاہی محمد عمران، سپاہی شعیب، تو یہ جو چھ لوگ ہیں انفارچونیٹلی ان کی آج ڈیتھ ہوئی ہے. اور پہلے آپ کو پتا ہی ہے کچھ دن پہلے لسبیلا کے اندر بھی ہوئی تھی، اور اس کے اندر بھی اسی طرح چھ ہی لوگ جو تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر جو تھے کارپس کمانڈر تھے لیوٹیننٹ جنرل سرفراز، وہ بھی تھے اس میں، تو ان کی بھی سرفراز علی کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی. اچھا جناب، نواز شریف صاحب نے اب بالکل کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جی جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ اب فائنانس کی منسٹری سنبھالیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ جو مفتی اسماعیل صاحب ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، کیونکہ ان کے خلاف یہ بات آئی تھی سامنے کہ وہ بالکل چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سک رہے ہیں، اور ڈالر بہت نیچے چلا گیا ہے، انفلیشن بہت اوپر چلی گئی ہے. تو اب اطلاع آئی ہے کہ یہ لندن سے چل پڑے ہیں اور اسلام آباد پہنچ جائیں گے 5 ایئرز کے ایگزائل کے بعد. حالانکہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی ان کو ایگزائل میں کس نے بھیجا ہے، خود ہی ایگزائل اپنی کاٹ رہے تھے. تو بہرحال جی اب یہ علاج کے لیے گئے تھے، تو میرا خیال میں اب ان کا علاج پورا ہو گیا ہے، تو اب یہ ماشاء اللہ واپس آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر اللہ کی بلیسنگز میرے ساتھ رہیں تو میں اپنی ملک کی اکانومی کو واپس اسی جگہ پہ لاؤں گا جہاں پہ نواز شریف صاحب اس کو چھوڑ کے گئے تھے، کیونکہ اس وقت یہ ون آف دا اسٹرانگسٹ گلوبل اکانومیز تھی، ہمارے لو انٹرسٹ ریٹس تھے اور بہت ہائی ہماری گروتھ چل رہی تھی، روپی سٹیبل تھا، فوریکس جو ایکسچینج تھے وہ بے تحاشا تھا. حالانکہ اب تو کام میرے لیے بے تحاشا مشکل ہوئے گا، لیکن میں واپس آؤں گا اور میں یہ سارا کچھ کروں گا اور چیزیں ٹریک پہ لاؤں گا. اور انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کے خلاف تو بڑے سارے کیسز ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ سارے میرے خلاف جو ہیں فیک کیسز ہیں ٹیکس فائلنگ کے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے ٹیکس فائل کرنے سے پیچھے نہیں میں ہٹا، تو یہ جھوٹا کیس ہے میرے اوپر. تو اس لیے جی تو اب یہ نئے جناب آئیں گے اینڈ ایز اے سینیٹر پہلے اوتھ لیں گے اور پھر یہ فائنانس منسٹر جی بنیں گے پاکستان کے. پی ٹی آئی اینڈ دس پی ٹی آئی از ناٹ پریس ٹرسٹ آف انڈیا، دس پی ٹی آئی از پاکستان تحریک انصاف. انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ ابھی جو رحمت اللہ گوری صاحب بھی جو وہ لیک ہوئی ہیں بہت ساری آڈیوز پی ایم او سے، اس کے اوپر بات کرتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ جتنی لیک ہوئی ہیں ویڈیوز اور آڈیوز ان کے اوپر جو ہے ہمیں پتا چل گیا ہے کہ یہ کیا چکر ہے، یہ انہوں نے ہیکرز جو ہیں یہ انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں میں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، اور یہ ڈارک ویب پہ اس کو ملینز آف ڈالرز کا بیچنے کا یہ سوچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جتنی چیز سامنے آئی ہے اس کے علاوہ 340 آورز کی جو یہ لیک ہوئی ہے، اس کے اوپر کسی نے کوئی تو ایکشن نہیں لیا، تو ابھی اور بھی بہت ساری لیک ہونے والی ہیں، تو اس کے اوپر ایکشن یہ کیسے لیں گے. پی ٹی آئی کے زمانے میں جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو ہم نے اپنی ایجنسیز کو لیٹسٹ اکوپمنٹ لے کے دیا تھا تاکہ کوئی بھی سائبر اٹیکس نہ ہو سکیں، کوئی چیزیں جو ہیں یہ لیک نہ ہو سکیں. اس سے پہلے جو انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے بڑا نوٹس لیا اور انویسٹیگیشن وہ کریں گے، اور مریم اورنگزیب نے بھی یہی بات کی تھی. فواد چودھری نے کہا کہ یہ جو ان دونوں کے کامنٹس ہیں انتہائی فنی ہیں، سارا کچھ جب لیک ہو گیا تو اب کیا انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور اب کیا اس کے اوپر پروب بٹھانی ہے. تو ایسے انہوں نے کہا. اچھا جناب، ایک پریس کانفرنس آج کراچی میں کر رہے تھے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب صاحب، کیونکہ انہوں نے کر دیا ہے ریزائن، اور آج پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے ریزائن کیوں کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ کچھ دن پہلے اصل میں کیا ہوا ہے کہ جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس نے جو جماعت اسلامی تھی اس کی ایک پیٹیشن انہوں نے ڈالی تھی جس میں کہ انہوں نے ڈائریکٹ کیا تھا کراچی کی ایڈمنسٹریشن کو کہ آپ ریکوریز اور زیادہ کریں، اور جو کے الیکٹرک ہے اس کے کراچی الیکٹرک کے جو بلز ہیں ان کو نہ بڑھائیں، ان کے تھرو ریکوریز نہ کریں. تو اس کے اوپر آج انہوں نے ریزائن کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ میں تو دن رات کام کر رہا تھا کراچی کی جو ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، میں نے یہاں پہ جو ہیں سڑکیں بنائی ہیں اور بھی بڑا کچھ کام کیا ہے، اور جو ہے وہ اس سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا. اب جبکہ جب پانی سارا یہاں پہ آیا ہوا ہے کراچی میں، روڈیں بہ گئی ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہیں، تو ان سے پہلے کے جو لوگ تھے وسیم اختر وغیرہ یا نعیم الرحمان صاحب ان کے دروازے پہ کوئی نہیں جاتا، لوگ میرے دروازے پہ آتے ہیں مجھ سے کوسچن پوچھتے ہیں یا کہ کراچی الیکٹرک سے جو ہیں وہ کوسچن کرتے ہیں. اور آپ ان کی ابلٹی دیکھیں کہ ویسے انہوں نے بڑا شور مچایا، ہم نے بڑی ریکوریاں کی 20% ٹوٹل ریکوریاں کی اور وہ بھی پیسہ ہمیں نہیں ملا، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ کہاں ہے. تو اس لیے شیئر مس مینجمنٹ جو یہاں پہ چل رہا ہے اس کے بعد اب میں اس سٹی کو ایڈمنسٹر نہیں کر سکتا ہوں.
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं। कॉल हैरी सॉन Now 647-228-1000 Harry Sond of Majestic Mortgages. अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट किनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100। कंसल्टेशन एब्सोल्यूटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
ग्रिल इन द हार्ट मिसेस सागा में ऑर्डर वाया फोन, इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383। ग्रिल इन द हार्ट
जी।
हाँ जी, अच्छा जी, तो बस माजा भाई ये फिर हुआ, दिल टूट गया उनका, मुर्तजा वहाब साहब का, उन्होंने कहा मेरा दिल टूट गया है तो इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, इंडिया में जो आज सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने आज फिर से शाहरुख खान साहब के खिलाफ जो है एक केस लेकर आए थे, और वो केस ये था कि जिस वक्त अपनी ये रईस की प्रमोशन फिल्म की कर रहे थे उस वक्त जो है इतना रश इन्होंने उधर कर दिया था रेलवे स्टेशन पे कि उसकी वजह से एक आदमी को जब हार्ट अटैक आ गया तो उसको बचाया नहीं जा सका। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है ये जो क्रिमिनल केस था शाहरुख खान के अगेंस्ट 2017 में जो वडोदरा रेलवे स्टेशन पे हुआ था जब ये अपनी फिल्म रईस की प्रमोशन कर रहे थे, वो उन्होंने आज फिर से क्वाश किया है क्योंकि ये सबसे पहले केस इनके खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में किया गया था अप्रैल में, और उसने भी ये कहा था कि इसमें शाहरुख खान का कोई कसूर नहीं है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बात करते हुए कहा कि शाहरुख खान का इसके अंदर क्या फॉल्ट है, वो जस्ट बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी इट डजंट मीन कि उसके कोई राइट्स नहीं है, उसके भी राइट्स हैं लेकिन चूंकि वो सेलिब्रिटी है तो ये उसकी पॉसिबल नहीं है उसके लिए कि वो एंश्योर करे किसी की सेफ्टी, अपनी पर्सनल गारंटी वो किसी को नहीं दे सकता कि जी मैं तुम्हारी सेफ्टी करूंगा, हर किसी को या सिचुएशन को वो जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो आप जो हैं ये बेफजूल के मुद्दे जो हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट्स में लेकर खास तौर पे आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो जब गुजरात हाईकोर्ट ने इस केस को खारिज किया है तो हम भी इसको खारिज कर रहे हैं, तो बेचारे के सांस में सांस आई है। एंड जनाब देव आनंद साहब जो हैं उनकी 99th बर्थ एनिवर्सरी है आज जनाब अली, आपको पता ही है कि बड़ा अरसा इन्होंने लोगों के दिलों पे बड़ा राज किया और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी हसीनाएं भी इंट्रोड्यूस कराई, लेकिन इनका एक पुराना इंटरव्यू सामने आया है जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी का पहला प्यार जो है वो सुरैया थी, लेकिन बाद में इन्होंने शादी की थी कल्पना कार्तिक से 1954 में और उनसे इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो शुरू कैसे हुई स्टोरी और ये पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि जब इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी देव आनंद साहब ने रोमांसिंग विद लाइफ, तो उसके अंदर इन्होंने लिखा कि सुरैया जो थी उनके साथ जो इनकी पहली फिल्म थी और एक गाने की जो शूट कर रहे थे किनारे किनारे चले जाएंगे विद्या थी वो फिल्म, उसके अंदर जब ये कर रहे थे तो उसके अंदर ये बोट से स्लिप होके पानी में गिर गई, देव साहब ने बड़ा हीरो बनते हुए पानी के अंदर छलांग लगाई और इनको बचाया और फिर इनका प्यार हो गया, लेकिन चूंकि सुरैया मुसलमान थी ये हिंदू थे तो इनकी जो ग्रैंड मदर थी उनको ये पसंद नहीं था, दोनों भाग के लेकिन फिर भी शादी करना चाहते थे, लेकिन एन उसी वक्त पे जो सुरैया की ग्रैंड मदर थी उसको पता चल गया तो स्यापा पड़ गया तो उसने रोक लिया। तो फिर जो है सुरैया ने कहा कि अच्छा ठीक है अब मैं नहीं इनसे शादी करूंगी, तो इनका दिल बड़ा टूट गया देव आनंद जी का और इन्होंने तो शादी कर ली लेकिन सुरैया ने सारी जिंदगी कभी शादी नहीं की और 74 इयर्स तक उनकी जो डेथ जब हुई तो शी वाज 74 उस वक्त तक वो अनमैरिड ही रही। ये होता है ट्रू लव माजिद भाई, आपकी तरह नहीं है कि पता नहीं कितने लोगों पे दिल आ रहा है हर रोज, वो भी डेली बेसिस पे
दिल तो
न जाने किस पे आएगा। ये भी ये देव आनंद साहब का ही गाना था
जी।
हां जी बस जी बस, तो थोड़ा यही हाल है माजिद भाई, ठीक है जी। तो ये जनाब इनकी एक बात सामने आई है, एंड जनाब साडा फोर्ब्स मैगजीन जो हमारे सीने पे मूंग दलने बैठा हुआ है, जो इंतहाई दर्दनाक स्टोरियां हमें देता है फोर्ब्स मैगजीन है जी, दुनिया की अमीर तरीन औरतें, दुनिया के अमीर तरीन मर्द, दुनिया की अमीर तरीन जो है एथलीट्स, महंगी तरीन कैड़ियां है जी, दस दस लाख डॉलर दिया कड़ियां ते बोट से की कुछ। आज फिर एक उनकी रिपोर्ट आ गई है जी फोर्ब्स मैगजीन की। फोर्ब्स मैगजीन की इस रिपोर्ट के मुताबिक सिंडी क्रॉफर्ट आपको पता है टॉप मॉडल रही हैं, उनका जो मेलबू में एक एस्टेट थी पूरी, वो जनाब किम कैडेशियन ने खरीद ली है फॉर 70.4 मिलियन यूएस डॉलर्स की। ओनली आपके लिए, तो ओनली
मॉर्गेज कराना है
मॉर्गेज नहीं और ये जो घर था पहले सिंडी क्रॉफर्ड से खरीदा था इन्वेस्टर एडम वीज और उसकी वाइफ येलोस्टोन एक्ट्रेस जो है बैरेट स्वातक ने वो ली थी, और ये इन्होंने 2018 में जो है सिंडी क्रॉफर्ड से खरीदा था, और ओरिजिनली इन्होंने उनसे खरीदा था 45 मिलियन यूएस डॉलर्स का, लेकिन मार्केट के अंदर 99.5 मिलियन का बेचने के लिए रखा हुआ था, लेकिन चूंकि आपको पता ही है मार्केट जो है वो कैंकड़ उछ हुई है, नीचे आई हुई है, तो 70.4 मिलियन का जो ये इन्होंने जी मैलिबू एस्टेट खरीदा है।
दैट्स अ स्टील।
या आई नो, सीरियसली। हाँ जी, बराबर 99 से 70.4 या कमी है,
30 मिलियन डॉलर कम हो गया ना।
हाँ मजद भाई, यस आई नो,
यहाँ आप 1 मिलियन डॉलर की बात कर रही
हैं। सानू 1 मिलियन डॉलर नहीं दे राजी, कोई राजी नहीं है सानू है जी ये। एंड जनाब पाकिस्तान की तो खरबें आपको बता दी हैं, लेकिन पाकिस्तान की कोई विक्ट्री जो है वो इतनी क्रिकेट में इतनी कन्विंसिंग नहीं थी। बहरहाल मुझे कुछ लोग कहेंगे कि एक रन से भी जो जीतता है जीत जीत होती है,
खत्म बात हो गई।
हाँ, लेकिन कोई इतनी यानी कि
रेस्ट माय केस,
कोई एडी कन्विंसिंग नहीं थी।
पर
हाँ जी चलो ठीक है, फिर कुछ रोजते ठीक है। लेकिन जनाब इंडिया ने बड़ा जबरदस्त काम किया, उन्होंने जो थर्ड और जो बिल्कुल अपना डिसाइसिव T20 था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो जीत लिया वीकेंड के ऊपर। और वैसे पाकिस्तान इंडिया बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, इंडिया जब हारता है पाकिस्तान भी हारता है, इंडिया जब जीतता है पाकिस्तान भी जीतता है। व्हाट इज दिस माजिद भाई, व्हाट इज दिस, बड़ा भाईचारा चल रहा है। अच्छा जी बहरहाल जी, इन्होंने भी जो है 6 विकेट से जीता जनाब, और अभी एक बॉल जो थी वो रहती थी, एज अ रिजल्ट इन्होंने सीरीज जो है वो जीत ली है। हार्दिक पांड्या जो है 25 नॉट आउट थे, लेकिन उन्होंने हिट की थी विनिंग बाउंड्री। इसके अलावा जो कोहली और यादव जो हैं, सूर्य कुमार यादव, उन्होंने जबरदस्त ओवर 100 रन की जो है वो स्टैंड दी थी। इंडिया जो था अपना जो ओपनर जो था रोहित शर्मा 17, केएल राहुल 1 के ऊपर आउट हो चुके थे, और ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किया था 186 for 7, तो बहुत ही सख्त किस्म का इनके सामने टारगेट था। तो सूर्य कुमार यादव ने 5 बाउंड्रीज 5 छक्कों से 36 बॉल्स पे 69 बनाए, कोहली साहब ने 48 बॉल्स पे 63 बनाए। तो जी तोड़े तो देते इन्होंने, कोहली साहब ने भी तो क्या खेला, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी वाह जी वाह क्या बात है। तो जनाब ये अब जो हैं जीत गए हैं T20 जो है सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एंड जनाब पाकिस्तान के क्यूरस जो हैं उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त काम किया ड्यूरिंग द वीकेंड, कुछ मैचेस जीते कुछ हारे, लेकिन बहरहाल जो हैं जीते भी। पाकिस्तान के जो क्यूरस ने एट एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप इन कुआलालंपुर, ये जो टीम हमारी गई हुई है इसमें जो सेकेंड सीड है बाबर मसीह, उन्होंने श्रीलंका के जो मोहम्मद थाला हैं उनको हराया। और लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये अली जलील अली ऑफ इराक बिल्कुल अनसीडेड प्लेयर हैं, उनसे जो है ग्रुप बी में फिर हार गए। लेकिन जो रेनिंग चैंपियन है इस वक्त वो है एसन रमदान, और इन्होंने बैक टू बैक जो है वो विक्ट्रीज ली अपने ग्रुप जी में। इन्होंने पहले इंडियन जो क्यूरस थे धवराज हारिया उनको ओपनिंग मैच में हराया, और उसके बाद मलेशिया के हैंग युआन यू को जो है वो हराया। तो जनाब जो है वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो बड़ी हम खुश हैं भैया।
मुबारक
वेटू को, मुबारक है जी वेटू को, वेटू को इंशाल्लाह। एंड जनाब जो सबसे बड़ी खबरें जो यहाँ पे जो यंगस्टर्स के लिए जो सबसे क्रैकिंग खबर थी वीकेंड की, वो आप कहेंगे पाकिस्तान की विक्ट्री, नो नो, हमारा जो कनेडियन है उसने जोकोविच को हराया है। साडा बच्चा, साडा कनेडियन काका जो है ये हैं फेलिक्स ऑगर एवसीमो 22 years old फ्रॉम मॉन्ट्रियल, इसने जनाब जोकोविच को डबल्स में हराया है। और इस तरह से जो टीम वर्ल्ड का ये हिस्सा है, तो टीम वर्ल्ड जो है वो 10-8 की लीड से टीम यूरोप जो है उससे आगे चल रही है, और अभी 2 मैचेस वैसे रहते हैं। लेवर कप जो आपको हम बता रहे हैं, लेवर कप जो चल रहा है, तो इसने 21-time ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच को 6-3, 7-6 से जो है ये हराया है। और उससे पहले जो है जो मैचेस हुए थे उसमें जो इसकी टीम थी उसके साथ अमेरिकन जैक सॉक के साथ, इन दोनों ने मिलके एंडी मरे को और मटीनो ब्रेटिनी को भी हराया था 2-6, 6-3, 10-8 से. तो जनाब क्या बात है, 22 ईयर ओल्ड है और
ही इज अ टेरिफिक प्लेयर.
ओ माय, इतना स्ट्रांग आर्म देखा उसका, कितना स्ट्रांग आर्म है, आर्म बहुत स्ट्रांग.
ये ऑगर ने बड़े जो टॉप के जो प्लेयर्स है ना उनको हराया.
स्पेनिश
का जो प्लेयर था वो कहते हैं नंबर वन है आजकल, जो नंबर वन है ऑगर ने उसको भी हराया लास्ट वीक. तो ही इज अ टेरिफिक प्लेयर, अमेजिंग प्लेयर एंड
अमेजिंग प्लेयर.
देख लीजिए.
ओ यस, ये देखें जी, देखें माजिद भाई, इनकी जीन्स जो है ना, ये जो है, ये जो इनकी, ये बड़ी जबरदस्त है इनकी, ये जो है.
नो, ही इज अ टेरिफिक प्लेयर, टेरिफिक प्लेयर. अभी जितने भी दूसरे आए थे ना सामने,
सारे बैगेन. तो ये जो है ना, ये खड़ा हुआ है अभी, ये टॉल होता जा रहा है इसका, और टॉल होता जा रहा है.
ही इज एन अमेजिंग प्लेयर.
मैं तो देखती हूँ माजिद भाई, इतनी कोई इसके बाजू में स्ट्रेंथ है ना, और ये नहीं होता कि वो थोड़ी देर के बाद जैसे हफना शुरू हो जाते हैं लोग, वैसा नहीं है ये. बड़ा स्टेमिना है इसके अंदर एंड अमेजिंग प्लेयर.
खैर, आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई.
कौन सी? नीले जय आपके जीत गए?
नहीं, वो नीले जय तो जीत गए, वो तो सेकंड प्रेडिक्शन थी.
अच्छा अच्छा अच्छा.
फर्स्ट प्रेडिक्शन थी, आपने अपने कहा था कि पाकिस्तान हार जाएगा.
मैंने कहा था सीरीज हारेगा. ना
सीरीज तो हारेगा, वो तो आपने कहा था.
इंग्लैंड जीतेगी.
ना, ये आपने ये भी कहा था कि ये गेम भी वो हार जाएगा. अच्छी तरह याद है मुझे.
अच्छा अच्छा, याद है.
हाँ, जब वो गेम चल रहा था तो मैंने कहा था यार ये तो शायद जीत रही है अभी, क्या हो रहा है, इधर रख ले अल्लाह, इधर रख ले, तो ये तो मामला खराब हो जाएगा. ये जब उन्होंने स्कोर करना शुरू किया, मैंने कहा वो शाजिया जी,
और अल्लाह ताला ने मुझे अल्लाह ताला ने मुझे दो चमाटे मारे. एक तो सैटरडे को गिराया, फिर मेरी प्रिडिक्शन गलत की, संडे को मुझे हराया. तो दो
उस वक्त मैंने कहा कि ओ ये तो मामला गलत हो रहा है, तो मैं किस मुंह से जाऊंगा वहां पर 770 पे. मगर फिर पाकिस्तानियों को नहीं, पाकिस्तानियों को जोश आया. जोश आया.
उन्होंने कहा माजिद भाई को हम हराने नहीं दे सकते.
नहीं,
शाजिया बीबी को हराओ. मारो, बैश करो
मारो, कुछ जो भी करना है,
जो भी करना है.
हाँ, मगर हमने ये मामला खराब नहीं होने देना. तो जी वो कुछ इमेजिन, उनके पास ज्यादा बॉल्स थी और रन्स कम थे.
वही तो माजिद भाई, वही तो बात है. क्या नहीं,
अगर वो आराम से एक एक भी रन ले लेते ना, तो जीत गए थे वो.
एग्जैक्टली,
एक एक रन भी ले लेते वो तो वो जीत गए थे, कहीं नहीं गया था उनका.
मगर माजिद भाई, आपने कल वो लड़कों का, वो गोरों का स्टाइल देखा है, वो जो बैट ऐसे करके पीछे,
हाँ
ऐसे जो पीछे करके,
हाँ.
और ये स्टाइल जो है ये मियां दाद ने शुरू किया था माजिद भाई. अच्छा? ये ऐसे ना रिवर्स स्वीप ऐसे करके मारना, लेकिन कल तो उन्होंने उसको भी उस स्टाइल को और चेंज कर दिया.
हाँ, तो पीछे
जैसे वो ऐसे मारने के बजाय ना, वो ऐसे सीधा, वो नहीं होता फुट्टा सामने लेके फुट्टे पे, वो जैसे पिंग पॉक गेम खेल बॉल खेलते हैं, वो बॉल आ रही है ऐसे करके मार रहे हैं.
हाँ,
क्या स्टाइल था है.
मगर उसमें चौका तो है ही, कहीं उसको तो रोक ही नहीं सकते आप.
स्टाइल क्या
मतलब, मेन चीज है छक्का ना पड़े.
यस,
चौका तो
पड़ेगा.
तो वो I'm telling you,
कल अल्लाह ने जताया इनको, इनकी अपनी कोई वैसे वो नहीं थी.
क्या चीज नहीं थी? अच्छा खेले मतलब, अल्लाह में अभी कहते हैं कि भाई तुम मेहनत करो.
हाँ,
इन्होंने मेहनत की, दो विकेटें ले ली,
एक
के बाद एक, दो विकेटें ली.
ओह माय गॉड,
दो विकेटें ना लेते तो
दैट वाज. हाँ, तो पांच रन तो चाहिए थे उनको, पांच या चार या पांच रन चाहिए थे उनको
बस. मगर हमने कहा कि हम तो आपको पहले दिलासा देते हैं कि आप परवाह ना करो, परवाह नहीं करो,
खेलो खेलो, दिल खोल के खेलो.
आप जीत गए हो. ऑल ऑफ अ सडन पता लगता है, व्हाट डू यू मीन आप जीत गए हो, मामला तो खराब हो गया. वैसे ये इनको हमेशा याद रहेगा, ये
है
ना, ये इनको हमेशा याद रहेगा कि ये अब कभी भी, कम से कम जब तक पाकिस्तान में नेक्स्ट थ्री मैचेस हैं, इंग्लैंड इज नॉट गोइंग टू टेक इट इजी.
माजिद भाई, वो ये शायद जीशान जरा ये हमारा स्टेटिस्टिक्स जो है करेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फॉलो करता है. वो कल मैं कमेंटेटर्स को भी सुन रही थी, वो मुझे फिगर भूल गई है, पता नहीं 2000 डेज के बाद 160 रन नहीं बना सकी इंग्लैंड की टीम कुछ ऐसे. जीशान कुछ ये स्टेटिस्टिक्स हमें बताओ आके.
उन्होंने कहा जी
फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम जो है इंग्लैंड की टीम जो है वो 167 का टारगेट या 150 से मोर का टारगेट जो है नहीं फुलफिल कर सकी
और ना ही कर सकेगी. अगले तीन मैचों में नहीं कर सकेगी।
मेचे मेचे हैं वो,
मेचे मेचे।
अच्छा बताएं जरा आपके नीले जय का क्या हो रहा
है? नीले जय दे आर विनिंग। मैं अब बात नहीं करना चाह रहा, आप पे बैन है।
अच्छा अच्छा,
आप कतई तौर पर नीले जय की बात ना करें,
ना करें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो
ब्लू जेस। सॉरी सर, आई एम नॉट टेकिंग एनी कॉल्स, क्योंकि अब हम चलेंगे टॉप ऑफ द आवर की तरफ, अपने आवली पैगाम की जानेब। उसके बाद फिर एक नातिया कलाम होगा, फिर नातिया कलाम के बाद फिर हमारी मगरिब की अजान होगी। आज 7:11 पे मगरिब की अजान है। बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह ताला, कल फिर आपसे मुलाकात। शाजी जी थैंक यू सो मच,
थैंक यू मच भाई, आई विल सी यू टुमारो
इंशाल्लाह ताला। एंड बस चलते चलते गुजारिश के तजर्बा हमेशा करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा, अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखा करें। हम आपके लिए दुआगो होंगे, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। खासतौर से हमारे दोस्त हमारे भाई मुजफ्फर अली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें, उनके साथ वो तमाम लोग जो अपना सफर मुकम्मल करके इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह सुब्हान तआला उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके दराजात को बुलंद करे, उन्हें जन्नत और फिरदौस जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। डायरेक्ट हम ले चलेंगे आपको ज़ीशान की जानिब till 7:30.
Facet mattresses, dining table, decorative items, garlic ki ji sare ghar da furniture vadhiya quality te discounted price te mil janda. Chhoti furniture to 3 saal layi no vyaj.
142 Kennedy Road, Brampton, 9058747171.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहेंगे।
SNS Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही SNS Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000।